18 मई शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में अभिवादन स्वीकार कीजिए आदर्श राठौर का। बार बार नाथूराम गोडसे की तारीफ क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और अब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया। महात्मा गांधी की हत्या के 70 बरस बाद भी बीजेपी और संघ परिवार में गोडसे को लेकर असमंजस क्यों। आज बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर है चर्चा। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक निलंजन मुखोपाध्याय, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। भारतीय लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के लिए कल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 59 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार गुरुवार रात 10 बजे ही खत्म हो गया था। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए आम चुनाव में वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विपक्षी लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मॉरिसन जैसे ही अपनी पत्नी के साथ वोट देकर एक पोलिंग बूथ से निकले, एक महिला मतदाता ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। महिला ने मॉरिसन से पूछा कि वो आगे क्या करने वाले हैं और मॉरिसन ने जवाब में कहा कि वो लोगों को रोजगार दिलाकर उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बीते एक दशक में अंदरूनी राजनीतिक रस्साकशी की वजह से 4 प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के कराची में एक जज ने शाहजेब जिलानी नाम के पत्रकार पर चल रहे मुकदमे को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। जिलानी पर साइबर आतंकवाद, नफरत भरे भाषण और मानहानि का मुकदमा चल रहा था। उन पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने का आरोप था। शाहजेब जिलानी बीबीसी में भी काम कर चुके हैं। जब उन पर ये आरोप लगे थे उस वक्त वो दुनिया टीवी के संपादक थे, लेकिन मुकदमे के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। जिलानी ने फैसले के बाद बीबीसी से बात की।
I was pleasantly surprised when FIA came back with their final report and they dropped the really serious charges of cyber terrorism and hate speech.
जब FIA अपनी आखिरी रिपोर्ट लेकर आई और मुझ पर लगे आरोप खारिज कर दिए गए तो मुझे खुशी और हैरानी दोनों हुई। उनका कहना था कि मुझ पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आप तब तक निश्चिंत नहीं हो सकते जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता। मेरे लिए आज बेहद राहत भरा दिन है और अब मैं अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौटने की कोशिश करूंगा। ये थे पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब जिलानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार में उत्पीड़न का शिकार होकर बांग्लादेश आए 60 से ज्यादा रोहिंग्या प्रवासियों ने वहां से भागने की कोशिश की और बांग्लादेशी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। ये शरणार्थी एक नाव में बैठकर कहीं और जाना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि इनमें कई संदिग्ध तस्कर हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश प्रशासन ने मलेशिया जा रहे महिलाओं और बच्चों के एक समूह को हिरासत में लिया था। बांग्लादेश में म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी शिविरों में मुश्किल हालात में रह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा है कि अमरीका के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद दोनों देशों में युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व युद्ध नहीं चाहता और अमेरिका को भी ये जानना चाहिए कि वो ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। वहीं खाड़ी देश बहरीन ने अपने नागरिकों को ईरान और इराक की यात्रा करने से मना किया है और जो लोग पहले से इन देशों में हैं उनसे तुरंत वापस आने की अपील की है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान और इराक में अस्थिरता और खतरे का माहौल है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं लाइव। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक निलंजन मुखोपाध्याय। विषय एक बार फिर से बता दें, बार बार नाथूराम गोडसे की तारीफ क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि साल 2014 में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा क्या था।
नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था।
साक्षी महाराज ने ये बात उस सवाल पर कही थी जब कुछ लोग गोडसे की जयंती और पुण्यतिथि मनाना चाह रहे थे। और अब कुछ दिन पहले ही भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए।
नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें, अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा।
हालांकि बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने इस बयान के लिए माफी मांगी, मगर बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी गोडसे को लेकर उनके बयान का बचाव किया या समर्थन किया। इनमें केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में ये कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। निलंजन मुखोपाध्याय जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी नेता पहले इस तरह से बयान देते हैं, कुछ नेता उसका समर्थन देते हैं और ये फिर पीछे हट जाते हैं।
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि तमाम संघ परिवार के जो सारे नेता हैं वो कहीं ना कहीं दिल में नाथूराम गोडसे को एक हीरो के तौर पे देखते हैं। वो एक तरह से हिंदुत्व के एक आइकॉनिक फिगर हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती है उसको पब्लिकली एक्नॉलेज करने की। जो फ्रिंज फोर्सेस होते हैं जैसे साक्षी महाराज या प्रज्ञा ठाकुर, उनमें हिम्मत होती है, वो बोल देते हैं, लेकिन चूँकि उनको मेन स्ट्रीम राजनीति में लाया गया है, उनको आदत नहीं पड़ी अभी भी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की, तो इसीलिए उनको वो बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उनके दिल में जो है वो सामने निकल के आती है और फिर उनके जो शीर्ष के नेता होते हैं वो एक तरह से इस मामले को बचाव करने के लिए कोशिश करते हैं और फिर एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग बयान देते हैं और फिर ज़बरदस्ती एक माफ़ीनामा उनसे निकलवाते हैं जिसका वो एक्चुअल मतलब नहीं होता है।
जी, तो ये दुविधा क्यों है गोडसे को लेकर, जो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आगे आना पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये बयान उनका अपना निजी विचार है और अनुशासन समिति जो है पार्टी की वो उन्हें ही नहीं अनंत हेगड़े और एक और नेता है उनको लेके कि इस पे कार्रवाई करेंगे, तो ये दुविधा क्यों है कि उनको जो है अगर जिस तरह से सवाल उठते हैं कि अगर वो इस तरह जैसे आपने कहा कि आइकॉन मानते हैं कुछ लोग हैं, फिर वो इस पे ना उगलते बनता है उनसे ना निगलते बनता है, ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है।
देखिए, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से गांधी जी को जो हत्या की गई थी वो ठीक की गई थी क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के प्रति कंसेशंस किए थे और उन्होंने पाकिस्तान के क्रिएशन में मदद की थी, इसलिए उनको पिनलाइज किया गया था। अगर आप गोडसे का जो डिफेंस स्टेटमेंट था, उनके जो ट्रायल हुआ था वो ठीक 70 साल पहले इसी समय हो रहा था, आपको याद होगा कि नवंबर 49 में उनकी एग्जीक्यूशन हुआ था, तो 70 साल पहले जो उनका जो बयान था जिसको बाद में किताब के तौर पे मैंने गांधी की हत्या क्यों की, वो एक तरह से हिंदुत्व एग्रेसिव हिंदुत्व का एक तरह से मैनिफेस्टो है कि उनको गांधी के जो नॉन वायलेंट राजनीति थी उससे क्या परेशानी थी, उनकी जो इंक्लूसिव राजनीति थी उससे क्या परेशानी थी, वो क्यों मानते थे कि गांधी एक तरह से हिंदू विरोधी राजनीति को प्रमोट किया था, तो उस मैनिफेस्टो को बहुत हाई रिगार्ड में देखा जाता है संघ परिवार के सर्कल्स में। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, पॉलिटिकली अगर आपको मेनस्ट्रीम में होना है तो आप गांधी को अटैक नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से आप एक फॉल्सहुड को जी रहे हैं और इसी फॉल्सहुड को जीने की वजह से है कि ये बार बार ये जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उभर के आता है इनके अंदर के रैंक्स में।
चलिए हमारे साथ एक हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें, ये बताएं कि जिस विषय पे सोचना क्या है आपका। जी आप तक आवाज आ रही है, लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा। तो जो जैसे हम ये बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले 5 सालों में कई बातों को लेकर सवाल उठे कि आपने जब जैसे नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने बड़ी आलोचना की कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जीएसटी को लेकर सवाल उठे, तब उन्होंने किसी तरह की सफाई नहीं दी, इसको लेकर कुछ वो बैकफुट पे आते हुए नजर नहीं आए, मतलब कोई मंच से कुछ कहा नहीं उन्होंने ऐसा। लेकिन जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया तो उन्होंने मंच से ये कह दिया कि भाई मैं उनको दिल से कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो बाकी मामलों पे तो नहीं आए, इस मामले पे उनको भी आना पड़ा।
आपने इस प्रोग्राम में पहले साक्षी महाराज का बयान बजाया था, तो जब साक्षी महाराज ने ये बयान दिया था 2014 में, तब भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनइक्यूवोकल कंडेमनेशन नहीं किया था। उस समय अगर किया गया होता तो एक क्लियर मैसेज चला जाता कि ये बातें नहीं बोलनी हैं। आपने अगर चुनाव के में प्रज्ञा ठाकुर को आपने खड़ा किया है तो ऑब्वियसली आपने इसलिए किया है क्योंकि आप जो हिंदू वोट है उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से कम्युनली पोलराइज करना चाहते हैं वोटर को हिंदू और मुसलमान के बीच में, तो आप एक मैसेज देते हैं कि आओ इस तरह की बातें बोलने के लिए यू आर वंस अगेन वेलकम, फिर बोल देते हैं तो फिर एम्बैरेसिंग हो जाता है और फिर आपको मतलब एक तरह से किसी तरह से निकलने की जगह ढूंढनी पड़ती है।
तो साध्वी प्रज्ञा को जब बीजेपी लाई थी तो वो इसी एजेंडे पे लाई थी कि इनको जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है कि हिंदू आतंकवाद के नाम पे इनको प्रताड़ित किया, जबरन फंसाया गया, और वो कह रहे कि हम ये हमारा जो इनको लाना है वो एक तरह से विपक्ष की उस राजनीति का जवाब है, तो प्रतीक के तौर पर लाया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो गांधी पर ये बयान दे दिया इसको लेके वो माफ नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री की और बीजेपी की स्टैंडिंग कहाँ रही?
ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर एक प्रतीक है हिंदू विक्टिमाइजेशन की, कि हिंदुओं को विक्टिमाइज किया जाता है इस देश में, चूँकि हिंदू टेरर नाम की एक मतलब कॉन्सेप्ट यूपीए के समय में उभर के आई थी, अलग अलग केसेस हुए थे, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, हैदराबाद के मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, अजमेर के दरगाह शरीफ में ब्लास्ट हुआ था, तो इन सब चीज़ों की जब इन्वेस्टिगेशंस हुए थे तो उसमें कहीं ऐसे लोग जुड़े मिले थे जिनकी संघ परिवार के साथ किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन स्थापित हुआ था, तो उन लोगों के खिलाफ अगर केस किया गया और उसके खिलाफ अभी भी प्रज्ञा ठाकुर बेल पे हैं, ऐसा नहीं कि उनको एक्विट कर दिया गया, तो आपने एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया, फिर उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होता है तो उसको आपको एम्बैरेसमेंट क्यों होती है? तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है तो उससे बचने के लिए मोदी जी ने ये बयान दिया, लेकिन शायद वो एक्चुअली मीन नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि गुडसे ठीक किए थे। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि गांधी हत्या केस में वीर सावरकर, जो वीडी विनायक दामोदर सावरकर जिनको ये लोग वीर सावरकर बोलते हैं, उनके खिलाफ भी केस हुआ था लेकिन वो एक्विट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद एक कपूर कमीशन का गठन किया गया था और उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मतलब क्लियर इंडिकेशन था कि नीडल ऑफ सस्पिशन उनसे बिल्कुल हटता नहीं है। तो एक तरह से एक अभी भी एक एम्बिग्युटी रह गई है कि सावरकर गांधी हत्याकांड में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों सावरकर के बारे में बहुत हाईली बोलते हैं, सिर्फ वो दोनों नहीं बाकी संघ के भी और लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में गए थे और जाके उनकी जो फोटो है सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी, जो वाजपेयी सरकार के समय लगाई गई थी, जिसका मतलब जब उसमें जाके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल वाजपेयी सरकार में जब फंक्शन होता था तो उसको कांग्रेस या बाकी ऑपोजिशन के लोग तब बॉयकॉट करते थे, तो मोदी जी बकायदा गए थे और वहाँ जाके बिल्कुल पूरे तरह से फूलों के हाथ चढ़ाई थी। तो उसके बाद आप अपने आप को कहाँ स्पेस देते हैं? आपने तो पूरी तरह से उस आदमी को आप हीरो मानते हैं जो गांधी हत्याकांड में इन्वॉल्व थे।
जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक निलंजन मुखोपाध्याय। चर्चा हो रही है साध्वी प्रज्ञा के गोडसे पर दिए बयान को लेकर, और भी नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं कि आखिर बीजेपी और संघ परिवार गोडसे को लेकर इस तरह से असमंजस में क्यों रहता है। हमारे साथ बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी जुड़ चुके हैं। राजेश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदर्श
जी। राजेश जी, निलंजन मुखोपाध्याय हमारे साथ हैं और जैसा कि आपने सुना कि चर्चा हो रही है कि क्यों दुविधा में है, तो ये आज की दुविधा नहीं है, ये संघ परिवार की दुविधा पहले की है।
हाँ, इसमें एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और जितना मैंने अभी तक समझा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं उनको, नाथूराम गोडसे के बारे में भले ही कुछ लोग विचार रखते हों अपने मन में, कुछ लोग उनको बहुत हीरो समझते हों, खुल के नहीं कह पाते हैं, लेकिन इसके उलट एक और महत्वपूर्ण चीज है कि गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में हिंदुत्ववादी लोगों के क्या विचार हैं। ये बहुत ही तथ्य, एक सर्वमान्य तथ्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी को अपने प्रातः स्मरणीय लोगों की सूची में रखा है, उन्होंने अंबेडकर को भी रखा है, लेकिन महात्मा गांधी को लेकर के और साथ में ही नाथूराम गोडसे को लेकर के संघ परिवार की दुविधा खत्म नहीं हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। जब भी आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करेंगे मन से, या कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी थे, उसमें प्रज्ञा ठाकुर की आलोचना जरूर की गई, लेकिन खुल करके नाथूराम गोडसे ने एक धतकर्म किया था, एक निहत्थे बूढ़े की हत्या कर दी थी और हम इसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं, उसकी विचारधारा को कंडेम करते हैं, इतने खुल करके शायद कभी बात आई नहीं है। निलंजन मुखोपाध्याय यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने किताब लिखी है
जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्व के आइकन्स पे। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि नाथूराम गोडसे की जितनी कड़ी निंदा होनी और उसकी विचारधारा की जितनी कड़ी निंदा होनी चाहिए उनके अपराध को देखते हुए, वो क्यों नहीं आती है?
क्योंकि मेन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि नाथूराम गोडसे जो किया था वो ठीक किया था, उस समय जब हत्या किया था तो उनके कनेक्शंस हिंदू महासभा के साथ पूरी तरह थे। वो एक मैगजीन को एडिट करते थे जो वीर सावरकर उसको प्रमोट करते थे, उसको फंड करते थे, तो उनके कहीं ना कहीं तरह से सिम्बियोटिक कनेक्शन था। और हालांकि आरएसएस से उनका कनेक्शन जो था डीलिंक हो गया था, लेकिन एक तरह से ये उसी इकोसिस्टम के हिस्सेदार थे।
हाँ, लेकिन टू बी फेयर टू दी आरएसएस, आरएसएस वाले लोग ये कहते हैं कि गुरु जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, उसके तुरंत बाद तत्कालीन जो सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय संघ के गोलवलकर, उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और महात्मा गांधी की हत्या को कंडेम किया था, ये संघ के लोग कहते हैं। और सीधे सीधे वो जो है नाथूराम गोडसे से दूरी भी बना लेते हैं। लेकिन गोपाल गोडसे, जहां तक मुझे याद है, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे और बहुत साल जेल में रहे। हाँ, उन्होंने, गोपाल गोडसे ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने कभी आरएसएस छोड़ा ही नहीं था, आरएसएस से त्यागपत्र जैसी तो कोई स्थिति होती नहीं है, बाहर गए ही नहीं थे वो, लेकिन दबाव संघ पर इतना था कि उन्होंने अपने ट्रायल के दौरान कह दिया कि मैंने संघ छोड़ दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका विदेश दौरे पे गए थे और वहाँ जाके उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जारी किया था कि वंस अ स्वयं सेवक ऑलवेज अ स्वयं सेवक। तो आप एक बार, ये तो कोई आरएसएस तो कोई मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ऐसा नहीं कि आप जब संघ जाने लगते हैं तो आप कोई पर्चा भर के साइन करके अपने हस्ताक्षर करते हैं और जब आप उसको जाना बंद कर देते हैं तो आप एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं अब से मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के साथ जुड़ा नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना फॉर्मल ज्वाइनिंग होती है, ना फॉर्मल एग्जिट होता है। अपने यूथ के दिनों में नाथूराम गोडसे पूरी तरह से इन्वॉल्व थे संघ के साथ, उसके बाद वो डिसोल्यूशन हो गए क्योंकि उनको लगा था कि थोड़ी सी और सक्रिय राजनीतिक रोल होना चाहिए और वही वजह है कि वो उससे हटके हिंदू महासभा के साथ जुड़ गए। लेकिन बाय एंड लार्ज जो आइडियोलॉजी जो संघ के साथ आइडेंटिफाइड है उसको वो पूरी तरह से समर्थन करते रहे।
निलंजन, मैं आपको थोड़ा सा अपने उसी सवाल की तरफ फिर से ले जाना चाहता हूँ, हालांकि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन कुछ तकनीकी खराबी
जी,
है हमारी,
बिल्कुल तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा,
इसीलिए मैं भी जो है फोन पर आया हूं और मैं स्टूडियो में नहीं मौजूद हूं। लेकिन निलंजन से मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि नाथूराम गोडसे को लेकर के या उन्होंने जो किया उसको लेकर के एक समर्थन का भाव हिंदुत्ववादी ताकतों में है, लेकिन उसे कंडेम प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया बहुत खुले शब्दों में। मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए कि कितना सही कितना गलत है, कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें, और ये पिछले 5-7 साल में जब सोशल मीडिया बढ़ा है और साथ में नरेंद्र मोदी सरकार भी आई थी, नाथूराम गोडसे को लेकर के समर्थन क्या बढ़ा है, इतने लोग प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में आए हैं सोशल मीडिया पे खासतौर पे, जिनको जिनमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, और ये अब रिकॉर्ड पे है। तो एक डिलेमा, एक दुविधा शायद ये भी है कि उन लोगों को नाराज कैसे कर दें जो जो गोडसे भक्त हैं, गोडसे को हीरो मानते हैं और गोडसे की आलोचना करके उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं हिंदुत्ववादी ताकतें, ऐसा मुझे महसूस होता है।
देखिए, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उनका जो ग्रोथ हुआ है, अगर हम एक इमेजिनरी अब इंडेक्स ऑफ हिंदुत्व को प्लॉट करें और उसमें हम अगर हम लोग वाई एक्सिस मतलब जो ऊपर की तरफ जो हिंदुत्व का वैल्यू को डालें और नीचे एक्स एक्सिस में हम लोग अलग अलग साल डालें, तो हमको देखने को मिलेगा कि 70 के दशक में या 80 के दशक में वो काफ़ी लो लेवल पे उनकी वैल्यू थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई है और 2014 के बाद बहुत सडनली बहुत एक तरह से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है हिंदुत्व के प्रति, समर्थन के प्रति। तो उस समर्थन जो है ये किसी कोई खास इकोनॉमिक या कोई सोशल कारणों से नहीं है, लेकिन प्योरली ड्रिवन रहा है एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रेजुडिस और उनके खिलाफ हेट्रेड की वजह से। तो वही कारण है कि किसी को भी अगर देखा जाए कि जो थोड़े बहुत प्रो मुस्लिम बातें करते हैं तो उनसे उनकी नाराज़गी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है, सिर्फ मोदी जी का ये बयान नहीं, जब आप जो पिछली साक्षी महाराज की जो बात हुई थी और जब 2014-15 में जब बहुत डिमांड हो रही थी कि गोडसे के लिए एक मंदिर बनाया जाए, तो लोकसभा में एक डिबेट हुआ था, उस डिबेट में सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने रिप्लाई दिया था और उन्होंने ये कहा था कि देखिए क्या वक्त आ गया है कि अब गोडसे को भी लोग भगवान मनाना चाहते हैं इस ये भारत में। उन्होंने उस समय भी बहुत अनइक्विवोकली कंडेम नहीं किया था गोडसे के उस एक्ट को। तो आज भी जो है प्रज्ञा ठाकुर को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन रीटरेट नहीं किया गया ना अमित शाह द्वारा ना ही नरेंद्र मोदी द्वारा कि गोडसे ने जो किया वो गलत किया। शायद उनको लगता है कि अभी भी चुनाव होने, कल 59 सीटों की वोटिंग होनी है, उनको ये लगता है कि अगर हम कंडेम करें तो वो लोग जो हमारी तरफ आ गए हैं कि इन्होंने जी स्ट्रॉन्ग हिंदू सेंट्रिक पोजीशंस लिए, वो डिसोल्यूशन होके वोट ना दें, उनको ये डर लगता है शायद।
निरंजन जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ी हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
मेरा नाम तोशी है
जी,
और मैं ये बात कहना चाह रही थी कि जो गोडसे के साथ पॉलिटिक्स है वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे एज के यूथ हैं जो कि किताबें नहीं पढ़ते हैं या फिर और भी चीजों के संपर्क में नहीं है, उनको ऐसी बातें या मतलब बार बार ऐसी बातें कहे जाने से हम एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री तैयार करते हैं। तो और उसी तरीके की हिस्ट्री जो है वो आगे भी हमारा वोट बैंक तैयार कर सकती है, और ये बात बहुत अच्छे से कही जा सकती है कि जो भी कंजर्वेटिव व्यूज रखते हैं या कंजर्वेटिव के बीच में गांधी को कभी भी नहीं माना गया है, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो या फिर किसी भी तरीके के धर्म के जो भी फंडामेंटलिस्ट हो। तो जो गोडसे का राग है वो इसी बात पर आधारित है कि हम बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि गांधी के जो समकक्ष में कोई और भी विचार था जो कि इस बात के लिए लड़ रहा था कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पे हिंदुओं को सबसे ज्यादा हक मिलना चाहिए।
तोशी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
जी, मैं इलाहाबाद से।
जी अच्छा, ये जो हमारा विषय है ये तो आपने बात रखी, इस पे भी हम बात करें, लेकिन ये जो विषय है हमारा कि आपको क्यों लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो भाई खुल के नहीं इस तरह से खंडन करती है बयानों का अपनी पार्टी का कोई नेता देता है, जितनी आलोचना होनी चाहिए गोडसे की?
क्योंकि पार्टी की लाइन मतलब आपके जो आइडियल है, आपके जो आइकन है, वही तो आपकी पार्टी लाइन तय करते है ना। आप किस तरीके, नेता सिर्फ नेता नहीं होता है, वो ये बताता है कि आपके विचार क्या है। तो जो गोडसे के विचार है उनसे बहुत अलग तो नहीं सोचती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि वो कभी भी खुल के ये बात बोल देंगे कि हाँ भाई गोडसे ने, अभी जो नई खबरें आ रही हैं जो कि अभी तहसीन पूनावाला ने भी कहा कि गोडसे ने उसमें खतना करा लिया था ताकि भारत में बड़े स्तर पे दंगे हो सके, इस बात को कोई कैसे स्वीकार करेगा कि वो दंगा कराने वाली सरकार है।
जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो जैसे इन्होंने कहा, इसके साथ ही एक और मैं सवाल ये जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग बहस को अब इस दिशा में मोड़ने लगे हैं कि भाई उनका जो तरीका हो गांधी की हत्या का वो बेशक गलत हो लेकिन उनका मकसद बहुत सही था।
मकसद सही होने का तो मतलब यही है ना कि आप मतलब वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को एस्पाउज कर रहे थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक्यूजेशन क्या है कि हिंदुस्तान की राजनीति में वोट बैंक क्रिएट करने के लिए मुसलमानों को अपीज किया गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विपक्ष के बाकी पार्टीज़ हो। जो गोडसे के अगर हम बयान को अगर हम दोबारा जाके देखें तो यही देखने को मिलेगा कि मेन एक्यूजेशन था कि गांधी ने मुसलमानों को अपीज किया। तो फिर फर्क क्या रहा गोडसे के विचार और आज के भारतीय जनता पार्टी के विचार में, फर्क क्या रहा, यही प्रॉब्लम है।
जी राजेश जोशी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से एक बयान इसी तरह को लेके पहले भी किसी नेता का बयान जो था वो सामने आया था,
आदर्श में दरअसल बाकी जो नेता हैं जैसे फ्रिंज के नेता जिनको कहा जाता है, प्रज्ञा ठाकुर हों या साक्षी महाराज, इन्होंने माफी वाफी भी मांग लेते हैं बाद में, उनकी बात अलग है। लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक की बात कर रहा हूँ
जी,
वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जिनको रज्जू भैया के नाम से जाना जाता था। नागपुर में 1998 में मैं गया, मैं आउटलुक मैगजीन में तब काम करता था और उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें बातचीत आखिर में नाथूराम गोडसे पर आ गई। तो मैंने सवाल पूछा नाथूराम गोडसे पे, तो रज्जू भैया ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये मुझसे कहा कि उनका मंतव्य अच्छा था, यानी नाथूराम गोडसे का मंतव्य अच्छा था लेकिन जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया वो तरीका गलत था, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने कहा। तो इसका मतलब अच्छा, उसके बाद उन्होंने कभी, हम लोगों ने छापी थी खबर, उसको कभी खंडन नहीं किया, हालांकि कांग्रेस ने उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो सब भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी खंडन नहीं किया इस बात का कि मैंने ऐसा नहीं कहा। आज की बात होती तो कोई दूसरी बात होती, लेकिन ये क्रेडिट उनको देता हूं मैं कि उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। तो इससे लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि गोडसे को लेकर जो डिलेमा है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा सवाल निरंजन मुखोपाध्याय से एक मैं करना चाहता हूं कि 1948 30 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया सन्न रह गई थी कि एक आदमी आया, पैर छुआ गांधी जी का और उन्होंने तीन गोलियां मार दी। 1948 से 2018 के बीच में या 19 के बीच में, इन 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि नौजवान पीढ़ी या बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि गांधी को आप सुपर ह्यूमन बीइंग क्यों मानते हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए, गोडसे की विचारधारा पर डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर डेमोक्रेसी में या अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करें तो उसमें तो ये सवाल बहुत जायज बनता है कि आखिर क्यों नहीं गोडसे की विचारधारा पर बात हो। क्या कहते हैं आप?
नहीं, सबसे पहले तो मतलब आपकी ये स्टोरी मेरे को याद है और हम लोगों ने तभी भी कहा था कि एक्चुअली जो है इशू गोडसे नहीं है, इशू गांधी है और गांधी की राजनीति से संघ को शुरू से प्रॉब्लम्स थे, उनकी जिंदगी के काल में भी और उनकी जो आफ्टर लाइफ है उसमें भी गांधी को लेकर प्रॉब्लम थी। लेकिन सवाल ये है कि गांधी को जिस तरह से हम लोगों ने उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में और जिस तरह से उन्होंने लीड किया था, तो हम लोग अगर राजनीति में स्पेस पाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि गांधी को अप्रोप्रिएट किए बगैर कुछ नहीं कर सकती। इसलिए देखिए कि मोदी सरकार ने जो है पिछले 2014 से स्वच्छ भारत अभियान हो या इनके जो करेंसी नोट्स हों उनमें गांधी को किसी न किसी तरह से सिम्बॉलिकली इस्तेमाल किया जाता है। गांधी के एसोसिएशंस, गांधी के बारे में बार बार अपने आप को बोला जाता है। लेकिन जो रज्जू भैया की जो इंटरव्यू की जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा था कि गोडसे की जो मोटिव्स थे वो मोटिव सही थे लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ठीक नहीं था, उनको किसी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से उनको अपोज करना चाहिए था, वायलेंट तरीके से उनको वायलेंट करके असैसिनेट नहीं करना चाहिए था, मोटिव मतलब तौर पर यही था।
जी हाँ, मुझे ये भी कहा था कि गोडसे अखंड भारत से प्रभावित थे, अखंड भारत की परिकल्पना से प्रभावित थे, ये भी कहा था। अब ये गोडसे ने जो दरअसल गांधी और गोडसे जहां तक हिंदुत्व का ताल्लुक है मेरी समझ से दोनों एक ही बराबर हैं हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए, न तो उगलते बनते हैं न निकलते बनते।
जी इसमें आखिरी बिल्कुल समय बहुत कम है, इसमें आप संक्षेप में जवाब दें।
एग्जैक्टली ये वाकई जो बोलते हैं ना कि मतलब सही बोला कि गले में फंस गई है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है।
बहुत बहुत शुक्रिया निलंजन उपाध्याय जी, राजेश जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने श्रोताओं से माफी चाहेंगे, आज आपकी कॉल्स हम ले नहीं सके किन्हीं कारणों से, तो अगले शनिवार को हम बीबीसी इंडिया बोल में नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सहयोगी रवि के साथ दें इजाजत। नमस्कार।